ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे कृष्ण। जिन भक्तों ने अपने मोबाइल फोन साथ में लाए हैं उनसे विनती है कि उन्हें या तो साइलेंट मोड पे कर दें या स्विच ऑफ कर दें। हरे कृष्ण।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जो विशेष लीला किए 500 वर्ष पूर्व अवतरित होकर, वो इतनी अलौकिक है कि इन 3-4 दिनों में हम क्या इसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने केवल जो एक दिन में लीलाएं की, कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो एक दिन की भी लीला ठीक से नहीं सुना पा रहे। वो कह रहे हैं कि ये मेरी व्यथा है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन में लीला किया करते, वो भी उसका कोई और छोर नहीं कि कितनी लीलाएं होती एक दिन में उनकी। तो कल्पना कीजिए कि उन्होंने जो अपने पूरे जीवन काल में जितनी सारी लीलाएं की, उनका क्या और छोर रहा होगा। कल हमने सुना उन भक्त के विषय में जो चैतन्य महाप्रभु से पहले अवतरित हुए, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी। ऐसे भक्त भगवान के कि स्वयं भगवान इनकी रक्षा के लिए और इनका गुणगान करने के लिए सारी दुनिया को दिखाया इन्होंने। जब माधवेंद्रपुरी गोवर्धन के सामने भाव विभोर अवस्था में कीर्तन नृत्य कर रहे थे, तो भगवान सोच रहे थे कि मेरे ऐसे अनन्य भक्त को कोई जानता तक नहीं, तो कैसे माधवेंद्रपुरी जैसे मेरे शुद्ध भक्त के गुण को यह संसार पहचानेगा। तो ये होड़ लगी रहती है भगवान के शुद्ध भक्तों में और भगवान में, कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान का गुणगान, भगवान का यश बढ़ाना चाहते हैं और भगवान अपने शुद्ध भक्तों का यश बढ़ाना चाहते हैं। परंतु दोनों में इस स्पर्धा में विजय होते हैं भगवान के भक्त। परंतु यहां पर इस लीला में विशेष रूप से भगवान विजयी हुए हैं माधवेंद्रपुरी का गुणगान करने में। तो कल हम कहां तक पहुंचे थे हमारी कथा में? अब माधवेंद्रपुरी गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा किए हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और बहुत विशेष समारोह हुआ अन्नकूट, और अन्नकूट के पश्चात फिर रात्रि में गव्य व्यंजन थोड़ा सा लेकर माधवेंद्रपुरी अब विश्राम के लिए गए। अब ये जो दूसरा स्वप्न आया माधवेंद्रपुरी को, ये उसी रात्रि को नहीं आया। 2 साल तक वहां पर अर्च विग्रह की पूजा जारी रही, और कल हमने इसकी चर्चा की कि हर दिन किसी न किसी गांव से लोग आते और अन्नकूट महोत्सव मनाते गोपाल जी के लिए। तो अब 2 साल के उपरांत अब फिर से गोपाल जी स्वप्न में आते हैं माधवेंद्रपुरी के, और कहते हैं कि मेरा जो तापमान है शरीर का वो अब तक कम नहीं हुआ है, शांत नहीं हुआ है, अब तक मेरे अंदर गर्मी है। देखिए, इतना अभिषेक और 2 साल हर दिन अन्नकूट महोत्सव और हर साल इस प्रकार का महाभिषेक का समारोह, इसके पश्चात भी गोपाल जी वो बोल रहे हैं, गोपाल कहे पुरी अमार ताप नहीं आए, मलय ज चंदन लेप तबे से जुड़ाए, कि मेरे शरीर की गर्मी कम नहीं हो रही, चंदन का लेप करो। और कौन से चंदन का? जो मलय पर्वत पर चंदन उपलब्ध है वो मलय चंदन लाकर मेरे शरीर पर उसका लेप करो, तब जाकर ये जो गर्मी है ये गर्मी शांत होगी। अब देखिए, भगवान प्रतीत हो रहे हैं कि भगवान को भी गर्मी लगती है। अब जिनके चरण कमल कोटिचंद्र सुशीतल कहा गया है, उनके चरण कमल जो कि हम सब की गर्मी को शांत करने वाले हैं, उनके शरीर को कैसे गर्मी लग सकती है, ये कैसे समझ में आए कि भगवान को भी गर्मी लगती है। भगवान को सर्दी गर्मी ये सब कुछ प्रभाव नहीं करती। भगवान यहां पर ये गर्मी का बहाना लिए, गर्मी का बहाना लिए और माधवेंद्रपुरी से और सेवा चाहते थे। और सेवा चाहना ये तो खैर था ही, परंतु इसके साथ साथ वो अब ब्रजमंडल और गोवर्धन क्षेत्र से बाहर माधवेंद्रपुरी के गुणों का बखान करना चाहते थे। तो उन 2 सालों में श्री गोपाल जी ने जो सेवा देखी माधवेंद्रपुरी की, तब वो सोचे कि इनके गुणों का बखान इससे भी बाहर होना चाहिए, इस ब्रजमंडल से भी बाहर। तो कैसे किया जाए? माधवेंद्रपुरी खुद तो जाकर सबको बताएंगे नहीं कि मेरे वजह से ये भगवान अवतरित हुए, आप लोग आकर देखिए। और ऐसा नहीं कि माधवेंद्रपुरी ने अपना नाम वहां पर दर्ज कराया था कि प्राण प्रतिष्ठित किसके द्वारा, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, ऐसा नहीं था। तो भगवान की विचारधारा कि कैसे अब पूरा भारतवर्ष, पूरा संसार जानेगा कि ये कितने महान भक्त हैं। तो ये बहाना लिया कि मुझे गर्मी लग रही है, जाकर चंदन लेकर आओ। बहुत से भगवान की लीलाओं में भगवान ये बाहरी रूप से बहाना लेते हैं अपने आप को दुख में डालने का, अपने आप की कोई पीड़ा को व्यक्त करने का। जैसे कि दामोदर लीला में, दामोदर लीला में हम क्या देखते हैं, दिवाली के दिन भगवान सोए हुए अचानक उठे, हालांकि अचानक नहीं, माता यशोदा पहले कीर्तन कर रही थी, सुबह सुबह जब दही को मंथ रही थी तो कीर्तन कर रही थी। और उस कीर्तन को सुनते ही, जैसे कल हमने क्या सुना कि जब माधवेंद्रपुरी कीर्तन कर रहे थे गोवर्धन को देखते हुए तो भगवान प्रकट हुए, तो वैसे ही जब यशोदा माई कीर्तन कर रही थी दही को मथते हुए तो भगवान जग गए। और भगवान माता यशोदा का, जैसे यहां पर माधवेंद्रपुरी का यश बढ़ाने के लिए अब अपने आप में गर्मी पैदा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरी गर्मी दूर करो, वैसे ही भगवान श्री दामोदर माता यशोदा का यश बढ़ाने के लिए भूखे हुए और भूख का बहाना लिया कि मुझे दूध चाहिए पीने के लिए। जैसे यहां गर्मी का बहाना, श्री दामोदर ने भूख का बहाना लिया। तो ये पूरी दामोदर लीला, जैसे कि यहां पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की वो सारी चंदन की लीला किस पर आधारित है? श्री गोपाल जी के गर्मी पर। यदि गोपाल जी को गर्मी लगती नहीं, मानो गोपाल जी ये कह देते कि पंखा लगाओ एक, बस उसमें हो जाएगा काम, या पंखा ढुलाते रहो किसी को बोलो, यदि इस प्रकार से वो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते, पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं भगवान कि गर्मी सहन नहीं हो रही मुझे, और यदि श्री दामोदर माता यशोदा को ये नहीं कहते कि मुझे ये भूख सहन नहीं हो रही, तो दामोदर लीला नहीं हुई होती। तो यहां इन 2 घटनाओं से क्या समझ में आता है? भगवान अपने आप को एक सर्वसाधारण मनुष्य की तरह व्यक्त कर रहे हैं अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए। शकटासुर वध, ये शकटासुर वध हुआ, इसमें जब माता यशोदा ने भगवान को शकट के नीचे रख दिया तो भगवान अब क्रोधित हुए, शकट के नीचे लेटे हुए सबसे सुरक्षित जगह माता यशोदा ने ढूंढकर भगवान को उसके नीचे रखा था, क्योंकि वो उत्थान उत्सव उस दिन था जब भगवान ने पहली करवट ली। तो उत्थान उत्सव के दिन इतने सारे एकत्रित हुए थे ब्रजवासी, ब्राह्मण इत्यादि और बगल के गांव से भी बहुत लोग आए थे कि भगवान पहली करवट लिए हैं वो उसे देखने के लिए। देखिए ये भगवान का ऐश्वर्य है कि उनकी करवट देखने के लिए कितने लोग आते हैं। तो लाओ किसी भगवान को यहां इस कलयुग के और कहो बदलो करवट, देखते हैं कितने लोग आते हैं उनकी करवट बदलते हुए देखने को। तो उस उत्थान उत्सव में इतने ब्रजवासी और अन्य ब्राह्मणगण आए तो माता यशोदा वो सबके स्वागत में लगी हुई। तो माता यशोदा ने सोचा कि मेरे गोपाल को नींद आ रही है तो सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए इसे। ये चिंता रहती है हर एक माता की कि बालक मेरा सुरक्षित कहीं पर भी रहे सुरक्षित रहना चाहिए। तो शकट के नीचे भगवान को रख दिया। भगवान उस लीला में ये दिखा रहे थे कि यह भौतिक संसार का नियम है। माता यशोदा ने सोचा कि शकट से ज्यादा सुरक्षित और क्या हो सकता है मेरे बालक के लिए, और सबसे ज्यादा खतरनाक उस पूरे क्षेत्र में वो शकट ही था क्योंकि असुर उसमें विराजमान शकटासुर। तो जो माता यशोदा ने सोचा कि सबसे सुरक्षित स्थान वो सबसे खतरनाक स्थान निकला कृष्ण के लिए। तो भगवान क्या दिखा रहे थे, इस भौतिक संसार में हम अपनी धारणा से जो अपनी सुरक्षा बनाते हैं वो हो सकता है सबसे खतरनाक स्थान हो हमारे लिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। तो भगवान को जब शकट के नीचे रखा तो माता यशोदा अब अन्य ब्राह्मणों के स्वागत में लग गई, उनकी सेवा में। तो भगवान अब जगे, जगकर भगवान तुरंत यहां वहां देखे किधर है, मेरी ड्यूटी पे होना चाहिए और ये क्या ब्राह्मणों के स्वागत में, यहां पर मैं जो सर्व आकर्षक हूं उसे छोड़कर ये, और कहां छोड़ा, शकट के नीचे। शकट आप लोग जानते हैं क्या, नहीं तो अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो गाड़ी जो होती है बैल या घोड़े की जो, उसे शकट कहते हैं, उसके नीचे रखा। तो भगवान अब क्रोधित माता यशोदा के ऊपर, तो हो सकता है कि ये भौतिक क्रोध हमें दिखे भगवान का कि ये क्या है, ध्यान नहीं दिया तो क्रोधित होगा। और ऐसा थोड़ी कि माता यशोदा ध्यान नहीं, उनकी भलाई के लिए ही तो रखा, तो इसमें क्रोध क्यों होना है, क्रोध क्यों आना है। क्रोध रजोगुण का प्रभाव है। तो यहां पर भगवान क्या दिखा रहे हैं कि उस शकटासुर की लीला, शकटासुर वध, शकटासुर का उद्धार के लिए भगवान ने कौन सा बहाना लिया, क्रोध का और मान अपेक्षित होने का कि मुझे मान नहीं मिल रहा, कि मुझे अकेले कहीं छोड़ दिया कोने में। जैसे कि यहां गर्मी का बहाना, दामोदर लीला में भूख का बहाना, शकटासुर लीला में अपमान का बहाना कि मेरा अपमान हुआ, सहन नहीं होगा मुझे ये अपमान, अकेले मुझे शकट के नीचे। तो अपमान का बहाना लेकर शकटासुर का उद्धार। तृणावर्त, तृणावर्त जब आया भगवान जान गए कि माता यशोदा मेरी मैया यदि मुझे लेकर अपने गोद में रखेगी तो ये तृणावर्त वो भेदभाव तो नहीं करने वाला, वो तो मेरी माता को भी कई भी ऊपर प्रहार करेगा। तो भगवान भारी हो गए, ओवरवेट, अचानक भगवान ओवरवेट हो गए। अब देखिए इस भौतिक संसार में लोग ठीक अपना वेट चाहते हैं, ना तो अंडर होना चाहिए ना ओवर होना चाहिए, एकदम मेरे हाइट के अनुसार मेरा इतना वजन होना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या करूं, ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर साहब क्या करूं, बहुत कम है। तो ये एक बीमार व्यक्ति की अवस्था है, ओवरवेट भी और अंडरवेट भी। तो भगवान अब ओवरवेट हो गए, और कितना ओवरवेट हुए, ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ 5-10 किलो बढ़ा लिया अपना, कोई जानता है भगवान कितना ओवरवेट हुए? पूरी पृथ्वी का भार जितना होता है, सोचिए उतना भारी भगवान हो गए। कितना है पृथ्वी का भार, कोई जानता है? तो सोचिए इतना भारी व्यक्ति, जैसे कल हम उसी के विषय में चर्चा कर रहे थे, गोपाल जी महाभारी ठाकुर, बहुत भारी ठाकुर वो भी हुए। तो यहां पर तृणावर्त लीला में तृणावर्त का उद्धार करने के लिए भगवान ने अपने आप को इतना भारी बनाया, ओवरवेट। तो ओवरवेट का बहाना कि फिर माता यशोदा रखेगी और फिर तुरंत अंडरवेट, इतना लाइट फेदरवेट हो गए, उसे अंग्रेज में फेदरवेट कहते हैं, कि तृणावर्त भी फिर विश्वास में आ गया कि अरे इतना हल्का, बहुत से बालकों का उसने वध किया था परंतु इतना हल्का बालक, पुतना, पुतना का उद्धार किया, पुतना दूध पिलाने की आई। तो भगवान किसी का भी ऑफरिंग अस्वीकार नहीं करते, चाहे वो दूध विषैला दूध हो या कैसा भी दूध हो, या माता यशोदा का दूध प्रेम से भरा हुआ। तो भगवान बहाना ढूंढ रहे थे पुतना का उद्धार करने के लिए। तो भगवान खोजते खोजते भगवान ने देख लिया, हां यदि कोई मुझे पूछे, यदि कोई मुझे कचहरी में ले जाकर पूछे कि पूतना का उद्धार क्यों किया, कोई भगवान से यदि इंट्रोगेशन करे कि क्या पूतना के अंदर ऐसे गुण देखे कि आपने पूतना को गोलोक वृंदावन धाम में निवास स्थान दिया, तो भगवान उत्तर देने लायक होने चाहिए ना। तो भगवान कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे? तो भगवान को ये प्रश्न पूछे उससे पहले ही बहाना ढूंढ लिए। अरे उसने दूध पिलाया ना, लेकिन वो तो विषैला दूध था, जो भी हो दूध तो पिलाया, मैंने केवल दूध पिया, मैंने केवल उसका दूध देखा। तो भगवान देखिए, जैसे हम बहाने ढूंढते हैं भगवान से दूर भागने के, भगवान बहाने ढूंढते हैं हमारे पीछे भागने के। तो यही लीला हो रही है हम में और इनमें। उनमें और यशोदा माई में क्या लीला हो रही है, वो भी भागम दौड़ चालू है। माता यशोदा भाग रही है कृष्ण के पीछे, कृष्ण भाग रहे हैं हमारे पीछे। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से डर कर दूर भाग रहे हैं, हम इनसे डर कर दूर भाग रहे हैं। तो भगवान न तो माता यशोदा से ज्यादा तेज भाग सकते हैं, इसलिए पकड़े गए, और न हम भगवान से तेज भाग सकते, तो होगा क्या, फिर हमारा भी पकड़े जाएंगे। तो पकड़े जाने से पहले ही हम सरेंडर हो जाएं। जैसे होता है ना, कई बार जब पुलिस किसी चोर के पीछे भाग रही होती है, तो फिर कोई ऐसा स्थान आ जाए, डेड एंड जिसे कहते हैं, अब आगे केवल दीवार, अब वो दीवार को फान नहीं सकते, तो पुलिस तुरंत हैंड्स अप, सरेंडर, है ना, तो दोनों हाथ ऊपर कर लेता है वो व्यक्ति, अब कोई चारा नहीं, अब तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो भगवान की वो बंदूक हमारे ऊपर तनने से पहले हम स्वेच्छा से यदि अपना सर उनके अंडर कर लें, हाथ ऊपर कर यदि हम कीर्तन करते रहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान अपने प्रेम में हमें बांध लेंगे। तो इन सब घटनाओं से हमें समझ में आता है, भगवान की लीलाओं से, कि भगवान ने बहाना ढूंढा इन सब राक्षसों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए। वैसे ही यहां पर भगवान ने बहाना ढूंढा कि उनको गर्मी लग रही है, चंदन लेकर आओ। अब देखिए, जब फिर से सपने में भगवान आकर अब ये आज्ञा दिए, ये दूसरी आज्ञा, दूसरी सेवा दे रहे हैं, जाकर मलय पर्वत सर, सब कुछ बताया, एड्रेस भी दिया भगवान ने, कहां से लाना है, मलय जो चंदन लेप, मलय पर्वत का जो चंदन है, ऐसा नहीं कि यहां वृंदावन में कहीं से मांग कर ले आओ चंदन, मलय पर्वत, वो मलय पर्वत है कहां, दक्षिण भारत में जो नीलगिरी पर्वत है उसे भी मलय पर्वत कहा जाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो मलेशिया देश है उसमें भी ये मलय चंदन या मलय पर्वत पाया जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं, हालांकि आजकल तो वहां पर कोई चंदन नहीं उगता, केवल रबर उगता है वहां पर, परंतु एक जमाने में वहां पर मलय पर्वत मलय चंदन मिला करता था, और भगवान के बहुत से अनन्य भक्त भी वहां पर रहा करते थे। तो भगवान ने एड्रेस भी दे दिया कि वहां जाकर वो चंदन विशेष रूप से लेके आना, और कोई चंदन नहीं चलेगा। तो अब ये दूसरी आज्ञा जो माधवेंद्र पुरी ने अब सुनी, तो क्या इनकी प्रतिक्रिया थी, स्वप्न देखी पुरी गोसानी रहैल प्रेमावेश, प्रभु आज्ञा पाली बारे गेला पूर्व देश, कि जैसे ही उन्होंने सपने में भगवान से ये आज्ञा सुनी, गोसाई हैल प्रेमवेश, प्रेमवेश में फिर से चले गए वो, ऐसा नहीं कि अब चिंता में चले गए, अरे बाप रे अभी एक और सेवा दी। कई बार जब हमें कोई सेवा सुनाई जाती है तो हमारी दशा क्या होती है, सुनाने से पहले ही यदि सर्विस इंचार्ज कहते हैं या हमारी निकट थोड़ा चलते हुए आ रहे हैं, तो तुरंत वो उनके कदम इतने ज्यादा डरावने लगते हैं हमें, परंतु यहां पर प्रेमावेश, प्रेम वेश में वो चले गए, प्रेम के आवेश में आ गए। और यहां पर क्या समझ में आता है कि भगवान माधवेंद्र पुरी को ही क्यों कहे, अब इतने सारे और भी तो ब्रजवासी, इतने सारे उनके शिष्य हो गए माधवेंद्र पुरी के, 2 साल तक उनके अर्च विग्रह की पूजा, इतने सारे पुजारी भी, फिर से माधवेंद्र पुरी को ही क्यों कहा, क्योंकि भगवान जब उनकी सेवा देखे तो भगवान उनकी सेवा देखते हुए उन्हें और सेवा देना चाहते थे, उन्हीं को केवल। जैसे हमारे आचार्य बताते हैं, सर्विस अट्रैक्ट्स मोर सर्विस, कि यदि शुद्ध सेवा किसी ने की है तो उसका परिणाम क्या है, और सेवा मिलती है। प्रभुपाद को जब पूछा गया कि आप क्यों ये जप कर रहे हैं, जप से क्या मिलने वाला है, और जप। तो यदि हमें इस प्रकार का साक्षात्कार हो कि 16 माला के बाद क्या मिलने वाला है, और 16 माला, अरे बाप रे, कितना हो गया 32। तो 32 माला कर और क्या मिलने वाला है, 16 नहीं फिर 32 कितना हो गया 64। आगे चले, और वो जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका अर्थ, उसका अनुवाद है क्या कि हे राधा कृष्ण मुझे और आपकी सेवा में लगाइए। जब हम भक्ति में आते हैं तो उसका अनुवाद क्या रहता है, मुझे सेवा में लगाइए। परंतु भक्ति में आने के बाद उसका अनुवाद क्या हो जाता है, और सेवा में लगाइए। सेवा में तो लगे हैं ना, कुछ तो सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं तो प्रसाद सेवा तो कर रहे हैं, तो ठीक है उसी सेवा में और लगाइए कम से कम। तो जब कोई भक्त प्रामाणिक सेवा करता है या किसी भक्त को जब सेवा मिलती है तो ये आशीर्वाद मानना चाहिए भगवान का। एक जैसे आजकल राधा गोपीनाथ मंदिर से जो यात्राएं निकलती हैं उनकी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, पिछली यात्रा में 3,500-4,000 इतने सारे भक्तों को उनका सब मैनेजमेंट करना, रहने का, उनकी व्यवस्था, खाने की, ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। तो एक भक्त राधानाथ महाराज को कह रहे थे कि जो पहले हम यात्रा में आया करते थे वो बहुत अच्छी मधुर यात्रा हुआ करती थी, केवल आप और हम 30-35 लोग, बहुत अच्छा आदान प्रदान, बहुत अच्छा हुआ होता, स्वीट यात्रा होती थी। अब देखिए महाराज किस प्रकार से देख रहे हैं। तो महाराज ने उत्तर दिया कि हाँ, वो इतने साल पहले जो आया करते थे यात्रा में 30-35 बहुत मधुर व्यवहार हुआ करता था, परंतु अभी की यात्राएं ज्यादा अच्छी है। तो ये भक्त पूछे कैसे, लेकिन इतने सारे लोग। महाराज ने कहा मोर अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। पहले सेवा का मौका कितना मिलता था, केवल 30-35 लोगों को, या 30-35 अवसर सेवा का। इस पुणे यात्रा में महाराज बता रहे थे 4,000 भक्त वहां पर, तो महाराज कहे कि कितनी सेवा का अवसर मिल रहा है, 3,999 सेवा का अवसर, क्योंकि खुद को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं ना, स्वयं सेवा नहीं। तो देखिए एक भक्त की कॉन्शियसनेस, चेतना क्या होती है। वैसे माधवेंद्र पुरी इतने प्रसन्न हुए कि और सेवा मुझे मिल रही है। अब ऐसा नहीं कि माधवेंद्र पुरी जानते थे कि आगे की लीला क्या होने वाली, कि आगे लोग कैसे जानेंगे कि मैं कौन हूं, इसलिए प्रसन्न हुए, नहीं। स्वयं भगवान चंदन मांग रहे हैं। अब हम जब इस प्रकार के श्लोक सुनते हैं, लीला सुनते हैं, तो हमें लगता है काश हमारे भी सपने में भगवान आकर चंदन मांगते। परंतु यदि भगवान आकर मांग ले तो फिर थोड़ी दुविधा हो जाती है। राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में अभी परसों ही प्रवचन परसों नहीं कल ही प्रवचन में बोल रहे थे कि यदि कलयुग में हमारे सपने में भगवान अब आते, मान लो हम इस कौन में हैं और हमारे सपने में भगवान आए कि मलय पर्वत से चंदन लेकर आओ, बहुत गर्मी हो रही बंबई में, तो महाराज बता रहे थे कि हम क्या करते, सबसे पहले इंटरनेट में जाते और वो गूगल अर्थ से लोकेट करते कहां पर है ये मलय पर्वत, और फिर अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर कुरियर से मंगा लेते। परंतु यहां पर माधवेंद्रपुरी इनके विषय में बताया गया है, सेवार निर्बंध लोक करिल स्थापन, आज्ञा मागी गौड़ देश करिल गमन। स्वयं गए वो, इतने सारे उनके पहले से शिष्य, ऐसा नहीं कि किसी एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर लेकर आओ, स्वयं गए। और यहां पर यह भी समझ में आ रहा है कि माधवेंद्रपुरी कितने एक्सपर्ट मैनेजर भी थे, कि उन्होंने यहां की जो उनकी सेवा, वो सेवा पहले दूसरे भक्तों को दी, दूसरे भक्तों को नियुक्त किया श्री गोपाल जी की सेवा में, और नियुक्त करने के पश्चात फिर वो स्वयं निकले। ऐसा नहीं कि अब गोपाल जी से कहे कि अब आप देख लेना आपकी सेवा, मैं जाता हूं आपका चंदन लेने के लिए, आप ही बोले हैं तो फिर आप ही खुद की यहां की सेवा आप देख लेना, आप किसी और के सपने में आके उसे बोल देना कि आज का भोग लगाना है ये सब। नहीं, सेवार निर्बंध लोक करील स्थापन, लोक करील स्थापन, स्थापित किया लोगों को कि तुम ये सेवा करोगे, तुम ये सेवा करोगे इन गोपाल जी की, जब तक कि मैं चंदन लेकर नहीं आता। तो यहां इनकी सेवा भी नहीं रुकनी चाहिए और वो सेवा भी जो मैं इनके लिए करने वाला हूं वो होते रहना चाहिए। इससे हमें क्या समझ में आता है कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जो इस प्रकार की व्यक्तिगत सेवा होती है वो उसका अवसर छोड़ते नहीं, कभी कभी उसका अवसर वो छोड़ते नहीं व्यक्तिगत सेवा का। जैसे कि यहां पर तो माधवेंद्र पूरी इस अवसर को नहीं छोड़ रहे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को हांके। अब देखिए, कोई पूछे कि क्या आवश्यकता थी भगवान को स्वयं रथ हांकने की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, क्या वो किसी का ड्राइवर बनने के लिए अवतरित हुए और वो भी सबके सामने, ऐसा नहीं कि अकेले कहीं पर। ये कई बार लोगों को थोड़ा अपमानजनक लग जाता है। जैसे एक बार हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बंबई में स्टॉल लगाने के लिए जा रहे थे, तो जल्दी जल्दी जो मारुति वैन में बुक्स भरी और टेबल लगाया, तो जो भक्त हमें ड्राइव कर ले जाने वाले थे, वो भक्त का नाम वो जो बुक टेबल पे रहने वाले थे जानते नहीं थे, तो उन्होंने उनको पूछ लिया, आप ड्राइवर हैं ना? इतना ज्यादा उनको अपमानित लगा, नहीं ले जाऊंगा मैं, ड्राइवर कह दिया। तो ये किसी को ड्राइवर कहना ये बहुत अपमानजनक हो जाता है कई बार, कि मैं क्या ड्राइवर हूं क्या? जैसे मुझे याद है बंबई में एक भक्त ने श्रीधर महाराज को बुलाया था एक उनका होटल के ओपनिंग के लिए, तो श्रीधर महाराज वहां पर हम लोग सब थे, तो श्रीधर महाराज अपने एक बहुत ही विशेष उनके जान पहचान के व्यक्ति को भी उस समारोह में बुलाए, तो अब हुआ क्या कि श्रीधर महाराज जिन व्यक्ति को देखे नहीं थे, फोन पे उनको बुलाया तो आए व्यक्ति, और उनके साथ उनका ड्राइवर भी आया अंदर। तो श्रीधर महाराज, उनका ड्राइवर भी एकदम बड़ा श्रीमंत व्यक्ति था, तो ड्राइवर भी उसका एकदम हाई फाई कपड़ों में पहना हुआ और सज धज के आया हुआ हुआ था। तो श्रीधर महाराज पहले जो मालिक उनका स्वागत किए, और फिर सबके सामने वो ड्राइवर को देखा तो श्रीधर महाराज पहचाने नहीं कि ये इनका ड्राइवर हो सकता है। तो श्रीधर महाराज उनका भी स्वागत किए कि आपका भी स्वागत है। तो फिर वो मालिक ने कहा ये मेरा ड्राइवर है, ये बताने के लिए कि ज्यादा आवभगत करने की जरूरत नहीं है, ये कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा ड्राइवर है। तो ये स्थिति आप जान गए कि सभी लोग, अब वो ड्राइवर पर क्या बीत रही होगी जब ऐसा कोई व्यक्ति कहे कि ये ड्राइवर ही है, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। तो श्रीधर महाराज समझ गए कि अब ये ड्राइवर पर क्या बीत रही होगी। तो श्रीधर महाराज कहते हैं, हमारे भगवान भी ड्राइवर है और हम ड्राइवर की पूजा करते हैं। वो इतना खुश हुआ ड्राइवर, और मालिक को देखते हुए श्रीधर महाराज बोले कि हमारे जो मालिक है वो भी ड्राइवर है, पार्थ सारथी। तो देखिए, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से, और भक्त भी भगवान को आनंद देने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेवा करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण व्यक्तिगत रूप से गौ सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान ने लक्ष्मी देवी को कहा कि थोड़ा फंड्स निकालो गौ सेवा के लिए, कहीं गौशाला चालू करेंगे। स्वयं भगवान गौओं को धोना धोना, उनको चराने के लिए ले जाना, उनको नहलाना सुनाना, सब कुछ भगवान अपने हाथों से करते गौ सेवा। जैसे कि यहां पर माधवेंद्रपुरी स्वयं गए उस चंदन को लाने के लिए। अब जाते हुए रास्ते में माधवेंद्रपुरी पहुंचे रेमुना, रेमुना में जहां पर श्री गोपीनाथ जी का विग्रह। आप में से कितने रेमुना में गोपीनाथ जी को देखे हैं? बहुत ही सुंदर विग्रह है, और यदि हो सके तो हम आपको प्रेरणा देना चाहेंगे कि आप लोग जो नहीं गए हैं, आप लोग मरने से पहले एक दिन तो जाकर आइए और वो सुंदर विग्रह देखकर आइए। और विशेष रूप से जो वहां जो खीर अर्पित होती है, अमृत केली, यदि अमृत केली का आस्वादन किसी ने नहीं किया है इस मनुष्य जीवन में, तो ये जीवन व्यर्थ। तो यहां पर माधवेंद्रपुरी पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को देखा तो इतना भाव विभोर हो गए गोपीनाथ जी के विग्रह को देखते हुए, वो जान गए कि यहां पर प्रामाणिक सेवा चल रही है इनकी, और तुरंत वो नृत्य और कीर्तन में लग गए वहां पर। और फिर क्योंकि वो भी गोपाल जी के अर्च विग्रह की सेवा में लगे हुए थे वृंदावन में, तो उनके मन में आया कि यहां पर गोपीनाथ जी के वर्शिप का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा दिखता है मुझे, और माधवेंद्रपुरी को कैसे समझ में आया कि डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है डीटीज को देखते ही। अर्च विग्रह को देखते ही माधवेंद्रपुरी, इनको समझ में आ गया कि इनके डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। देखिए, हम जब देखते हैं तो समझ में आता है, हम केवल ड्रेसिंग बहुत अच्छा है आज का, क्या पगड़ी बांधी है, क्या शॉल घुमाया है, उस सब को देख के हमें लगता है, परंतु डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड केवल उसी पर, हालांकि वो भी बहुत आज हमारे गोविंदानंद प्रभु ने इतना सुंदर डीटी ड्रेसिंग किया है, सुंदर किया है ना। परंतु इसके साथ साथ डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड उस शुद्धता के साथ भी देखा जाता है। जैसे कि प्रभुपाद भी इस प्रकार से जान लेते थे कि डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड कितना है उस मंदिर में। अब प्रभुपाद तो किसी मंदिर में 2-3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे, परंतु फिर भी जिस भी मंदिर में प्रभुपाद जाते तो डीटीज को देखते ही प्रभुपाद पहचान लेते कि यहां का स्टैंडर्ड कितना है वर्शिप का। तो सभी पुजारी डरे हुए रहते कि हमारा जो भी स्टैंडर्ड हो प्रभुपाद एक्सपोज कर देंगे शायद हमें। जैसे एक मंदिर में प्रभुपाद गए और प्रभुपाद ने भगवान के चेहरे की तरफ देखा और पुजारी से पूछा, थके हुए क्यों लग रहे हैं भगवान? तो प्रभुपाद देख रहे हैं और कह रहे हैं, भगवान थके हुए दिख रहे हैं। तो पुजारी समझ गए। तो क्या हो रहा था उस मंदिर में कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पुस्तक वितरण के लिए भक्तों को तुरंत सुबह सुबह भेजा जाता था। तो वहां के प्रेसिडेंट ने यह नियम रखा कि मंगल आरती हम 1 घंटा जल्दी शुरू करते हैं। तो मंगल आरती 1 घंटा जल्दी शुरू, तो अर्थात भगवान को 1 घंटा जल्दी उठाया गया। तो प्रभुपाद तुरंत जान गए कि भगवान को 1 घंटा जो अधिक विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसलिए भगवान के चेहरे पर थकान दिख रही। प्रभुपाद एक मंदिर में गेट से प्रवेश किए और इतने ही बड़े, जैसे हमारे गौरनिता है, इतने ही बड़े राधा कृष्ण के विग्रह, और प्रभुपाद गेट से ही देखते हुए कहे, तुरंत जाओ, उनके आंखों में कुछ है। अब देखिए, उतने लंबे से अर्च विग्रह की आंखें कैसे किसी को दिख सकती है? दिख सकती हैं केवल जब आंखों में प्रेम का अंजन है, तब दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं। तो तुरंत पुजारी गए और देखे क्या कि भगवान के माथे पर चंदन जो लगा था वो पिघल कर भगवान की आंखों में आ रहा था। तो प्रभुपाद उतनी दूरी से वो पॉइंट आउट कर कह रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ तो है। तो यहां माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ के विग्रह को देखते ही पहचान गए कि बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड इनका है डीटी वर्शिप का। और विशेष रूप से ये कुछ ऐसा भोग चढ़ाते हैं जो बहुत ही विलक्षण है। तो पूछे पुजारी से कि क्या चढ़ाते हो भोग? तो संध्या के समय वो 12 मटकों में ये विशेष खीर, और पुजारी ने कहा माधवेंद्रपुरी से कि ये इतनी विशेष खीर है कि अमृत तुल्य, इसलिए इसे हम खीर नहीं कहते, अमृत केली, उसका नाम अमृत केली, और ये हम अर्पित करते हैं। और उसी समय भोग चढ़ रहा था श्री गोपीनाथ जी को उस अमृत केली का। तो माधवेंद्रपुरी इनके मन में केवल कुछ एक क्षण के लिए ये विचार आया कि यदि मुझे टेस्ट करने के लिए थोड़ी मात्रा में ये स्वीट राइस मिल जाए तो मैं समझ जाऊं ये कैसे बनाते हैं लोग। ऐसा नहीं कि किचन में जाकर उनसे रेसिपी लेने गए थे, वो केवल थोड़ा सा मिल जाए तो वो समझ जाते कि इसे कैसे बनाते हैं। परंतु फिर तुरंत इनके मन में अपने आप को कोसने लगे कि मुझ जैसा पापी दुराचारी और कौन हो सकता है कि भगवान को भोग चढ़ रहा है और मैंने इच्छा की उसे भगवान के भोग, भगवान ग्रहण करने से पहले खाने की। देखिए क्या स्टैंडर्ड है उनके भक्ति का। कई बार जब हम भोग चढ़ाते हैं भगवान को तो हमें अपने आप को बहुत ज्यादा संभाल कर रखना पड़ता है कि हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, जो भी मंत्र बोल रहे हैं वो उनकी प्रसन्नता के लिए। हालांकि मुंह से तो निकलता है वो नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, परंतु कई बार मन में प्लानिंग हो जाता है सब्जी पहले खाऊंगा मैं, फिर बाद में स्वीट लूंगा, तो कौन सा आइटम कैसे कहाँ लेना है वो सब का प्लानिंग हमारा घंटी बजाते समय होता रहता है। तो यहां पर स्टैंडर्ड देखिए कि कुछ एक क्षण के लिए जब ऐसा विचार आया, कहा गया है अयाचित क्षीर प्रसाद अल्प यदि पाए स्वाद जानी तैचे क्षीर गोपाले लगाए, और वो भी सेवा के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा मटका मुझे मिलना चाहिए और 12 में से एक दो मिल गया वो भी ठीक है, खुद के लिए नहीं गोपाल के लिए। तो सेवा हेतु वो इच्छा हुई थी, परंतु उसमें भी वो अपने आप को कोस रहे हैं, और मांगा नहीं उन्होंने, केवल मन में एक क्षण के लिए ऐसा विचार आया, वो उसको सेवा अपराध मान लिए केवल मन में वो विचार आने से। और फिर जैसे कि भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के जीवन में ये कथा है कि बचपन में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने एक आम खा लिया, बच्चे जब छोटे से थे वो एक आम उन्होंने खा लिया, और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें ऐसा नहीं कि थप्पड़ मारकर और दंडित किया, केवल थोड़ा प्रेम से उन्हें डांटा कि ये विमल प्रसाद ये भोग नहीं चढ़ा था, आम अनऑफर्ड मैंगो। तो सोचिए वो छोटे से भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, उहोंने अब ऐसा प्रण लिया कि मैं पूरे जीवन भर आम को देखूंगा तक नहीं, पूरे जीवन भर फिर उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से दंडित किया। सोचिए ये इनका सबका स्टैंडर्ड। तो यहां पर इच्छाए लज्जा पान विष्णु स्मरण कैला हेन काले भोग सारी आरती बागीला। यहां पर अब तुरंत जैसे ही वो इच्छा हुई अपने आप को कोसा, उसके बाद बहुत विशेष है कि उन्होंने किया क्या, ऐसा नहीं कि अब रोते बिलखते बैठे पूरे दिन भर कि अरे रे इतना बड़ा पाप मुझसे हुआ क्या जी के फायदा। तुरंत विष्णु स्मरण कैला, जैसे वो इच्छा हुई उसके तुरंत बाद विष्णु स्मरण किया और अपने आप को शुद्ध कर लिया। तो माधवेंद्रपुरी क्या सिखा रहे हैं कि यदि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध भी हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए, विष्णु स्मरण। तुरंत उपाय भी दे रहे हैं, और ये बहुत शक्ति है, विशेष शक्ति है भगवान के स्मरण में। जैसे कि वो जो अपराध शोधन मंत्र होते हैं उसमें ये सब इति समस्मृत्य समस्मृत्य, कि आपका स्मरण करते हुए हे गोविंद जो भी मेरे अंदर तो कोई भक्ति नहीं, भक्तिहीन मंत्रहीन ये सबसे हीन मैं हूं, परंतु आपका स्मरण करने मात्र से, क्या है वो श्लोक, हाँ मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, आगे क्या है? आपके स्मरण से कुछ है शायद, आपके स्मरण मात्र से ये जो कुछ अपराध हुए होंगे वो सब कुछ उसका शमन हो जाए। तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि यदि जाने अनजाने में, अब यह नहीं कि जान बूझ के फिर अपराध करो और फिर स्मरण करते रहो, जैसे अजामिल, अजामिल ने अपना अधिकांश जीवन पूरा पाप में बिताया, परंतु जब समझ गया तो तुरंत भगवान के स्मरण और भक्ति में लग गया वो। अब वहां से तुरंत जैसे ही आरती उन्होंने देखी भगवान की, गोपीनाथ जी की, तो माधवेंद्र पुरी अब निकल गए वहां से, और फिर वहां के किसी एकांत स्थान में, उस रेमुना के एकांत स्थान में जाकर बैठकर भगवान का स्मरण और कीर्तन करने लगे। अब संध्या का वो ऑफरिंग हो गया, आरती हो गई, उस रात्रि को वो पुजारी, कौन सा पुजारी, गोपीनाथ जी का पुजारी, वो जब सोने गया तो भगवान अब इस गोपीनाथ के पुजारी के सपने में आए। तो एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, भगवान सपने में ही क्यों आते हैं, जब कोई जगा हुआ है तब क्यों नहीं प्रकट होते, क्योंकि भगवान फिर सपने में उस व्यक्ति के साथ वार्तालाप कर सकते हैं, और हो सके कि वो व्यक्ति भगवान को साक्षात देखकर वो ऐसी अवस्था में चला जाए कि फिर सारी सेवाएं भूलकर वहीं पर धराशाही हो जाए। तो ये सब को अवॉइड करने के लिए भगवान सेफली सपने में आते हैं और सपने में फिर आदेश देते हैं। तो वे पुजारी को उठाया कि जाओ उठो, मैंने माधवपुरी, माधवेंद्रपुरी के लिए खीर एक जो मटका छिपा के रखा है। ऐसा नहीं कि भगवान ने अब उस पुजारी को डांटते हुए, तुम क्या काउंटिंग करते हो, क्या करते हो, ऑफरिंग निकाला तो गिने कितने कितने मटके थे, 12 होने चाहिए, हा? इस प्रकार का ऑफरिंग करते हो, ऐसा नहीं। भगवान प्रेम से उस पुजारी को उठाए, तो यहां पर यह समझ में आता है कि देखिए वो पुजारी का स्तर क्या है, कि भगवान उस पुजारी के सपने में आ रहे हैं, और उठाकर पुजारी से कहा कि पर्दे के पीछे, ऑल्टर के पर्दे के पीछे छिपाया हुआ है मैंने एक मटका खीर का, किसके लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए, जाकर ढूंढ कर माधवेंद्रपुरी को मटका दो। अब यहां पर बहुत एक विशेष सिद्धांत कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस पुजारी की क्रिया के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। स्वप्न देखी पुजारी उठी करीला विचार, स्नान करी कपाट खुली मुक्त कैला द्वार। कि ये पुजारी ऐसा नहीं कि अब भगवान सपने में आया, अरे मटका रखा है पीछे, वो भी माधवेंद्रपुरी के लिए, भागो देखो कहां है, फोटो खींचो पेपर में छापो। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बिस्तर से उठे और ऑल्टर में भागे। स्नान कोरी, स्नान किया, सारे जितने नियत कर्म हैं वो नियत कर्म किए ऑल्टर में जाने से पहले, उसे वो भूले नहीं, वो पुजारी वो सब करते हुए उसके बाद गए। और ऑल्टर पर भी कहा गया है कि स्थान लेपिक खीर लान हैल बहिर, कि वो खीर वहां से लेकर फिर वहां पर उस स्थान को साफ भी किया। तो देखिए यहां पर ये जो डिटेल्स है इसको फॉलो कर रहे हैं पुजारी। चतुर्थ स्कंद में श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज की कथा है कि ध्रुव महाराज नारद मुनि द्वारा प्रेरित, अपनी माता सुनीति द्वारा प्रेरित, उन्होंने जो तपश्चर्या की, 6 महीने में भगवान को बुला लिया और अब भगवत धाम जा रहे हैं, वैकुंठ विमान आ गया है। तो ध्रुव महाराज की कथा में बताया गया है कि वैकुंठ विमान आ गया, परंतु ध्रुव महाराज अपना नित्य क्रम नहीं छोड़े। ऐसा नहीं कि वैकुंठ विमान आया अब तो भाड़ में गए, सारी दुनिया मेरे लिए आया वैकुंठ विमान, कूदो इसके ऊपर चलो तुरंत अपना नित्य क्रम, सबको सबसे आशीर्वाद लेना, सबको दंडवत करना, अपना नित्य क्रम करते हुए उसके बाद फिर वैकुंठ विमान में बैठे। जैसे तुकाराम महाराज, तुकाराम महाराज के लिए जब वैकुंठ विमान आया तो तुकाराम महाराज अपनी पत्नी के विषय में चिंता कर रहे थे और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरी ऐसी सेवा की है कि तुम्हारी सेवा के वजह से मुझे समय मिल पा रहा था भगवान का भजन करने के लिए, तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं एक पति होने के नाते तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम्हें मैं वैकुंठ विमान में गरुड़ के ऊपर तुम्हें मैं ले जाना चाहता हूं। अब खैर तुकाराम महाराज की पत्नी का इतना सौभाग्य नहीं था, वो अपने जो उसके मायके की भैंस थी उसमें ज्यादा आसक्त थी और उसकी उनके जो आराध्य देव आई मंगलाई उसमें ज्यादा थी आसक्त वो, तो वो तुकाराम महाराज से कहती है कि क्या ये वैकुंठ वैकुंठ लगा रखा है, मैं जानती हूं कि जब भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं ये थोड़ा घूम फिर के फिर से आ जाते हैं भाकरी खाने के लिए, तो बाकियों को वो बोल रही कि ये घूम फिर के आ जाएंगे, ये कोई वैकुंठ वैकुंठ नहीं जाने वाले, वैकुंठ वैकुंठ है ही नहीं, केवल एक ही है आई मंगलाई। तो अब तुकाराम महाराज उस गरुड़ में, गरुड़ जी आ गए वहां पर, तुकाराम महाराज अब सबसे आज्ञा ले रहे हैं, आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम क्या घ्यावा, और सबसे आज्ञा ले रहे हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद होगा तभी मैं जा पाऊंगा। तो ध्रुव महाराज सबका आशीर्वाद लिए, नित्य क्रम को भूले नहीं, हालांकि उनके लिए विशेष रूप से केवल उनके लिए वैकुंठ विमान आया, ऐसा नहीं कि एक सीट बुक थी उनके लिए केवल उसमें, ऐसा नहीं कि बाकी बहुत से जा रहे थे और उसमें ध्रुव महाराज का एक बर्थ था, वो पूरा वैकुंठ विमान केवल ध्रुव महाराज के लिए ही आया था। तो यहां पर भी यही हम सीखते हैं कि भगवान स्वयं सपने में आए। अब देखिए कि और कोई होता तो उल्टा ये भी कर सकता था कि वो मटका निकाले पर्दे के पीछे से, या मटका निकालने से पहले पूरे रेमुना गांव को बुलाए और कहे भगवान ने मेरे लिए मटका रखा है पीछे, जाओ जाओ देखो, खुद का नाम आगे लगा सकता था कोई, परंतु नहीं, वो मटका लेके पूरे रेमुना में चिल्लाते हुए हे माधवेंद्रपुरी हे माधवेंद्रपुरी, कौन हो सामने प्रकट हो, तुम्हारे लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री गोपीनाथ ने मटका चुराया है खीर का। तो जब माधवेंद्रपुरी सामने आए तो माधवेंद्रपुरी वो भाव विभोर अवस्था में भगवान की कृपा को देखते हुए रोने लगे और नृत्य करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी को पुजारी ने देखा, एतशूनीपुरी गोसाई परिचय दिल क्षीर दिया पुजारी तान रे दंडवत होइला, तुरंत अब ये ब्राह्मण है और ये इन्होंने ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं मैं कैसे दंडवत करूं किसी और को पता नहीं, जानता भी नहीं कौन है ये माधवेंद्रपुरी, देखा है कि यदि गोपीनाथ ने खीर चुराई है इस व्यक्ति के लिए तो ये सभी वर्ण आश्रम से ऊपर है ये व्यक्ति, इसलिए दंडवत किया। और अब जब खीर स्वयं गोपीनाथ ने अपने हाथों से छिपा के रखी वो खीर का मटका जब इनको मिला तो माधवेंद्र पुरी ने जब उसका आस्वादन किया कि कोई वर्णन भी नहीं कर सकता कि उसमें किस प्रकार का प्रेम भगवान ने संचित किया था। और फिर माधवेंद्र पुरी उस भाव विभोर अवस्था में उन्होंने उस मटके का क्या किया, उस मटके को टुकड़ों में तोड़कर एक गठरी में बांधकर अपने साथ रखे और रोज वो मटके के एक टुकड़े को खाते। यहां समझ में आता है कि माधवेंद्र पुरी वो खीर के पीछे नहीं थे, वो भगवान के महाप्रसाद के पीछे थे। ये दोनों में अंतर है। हम महाप्रसाद के नाम पर खीर के पीछे भागते हैं और माधवेंद्र पुरी खीर के नाम पर महाप्रसाद के पीछे। तो उन्होंने उस मटके में भी जो सूखा हुआ खीर का कण जो भी हुआ उसको भी खाते रहे वो। इसे कहते हैं वास्तविक प्रेम भगवान की महाप्रसाद के प्रति। इसलिए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर वो पूछा करते थे अपने सेवक से कि मेरे प्लेट का जो महाप्रसाद है कौन व्यक्ति क्या क्या चुनता है इसमें से, उस पर फिर वो निर्धारित करते कि कौन मेरे महाप्रसाद के पीछे है और कौन केवल वो आइटम के पीछे है। इसलिए कई बार प्रभुपाद भी ऐसा किया करते, पूरा मिक्स किया कर देते उसे, खीर भी दाल भी सब्जी भी सब एक में, और फिर सब भक्त के सामने जब वो महाप्रसाद आता तो भक्त फिर थोड़ा सा दे, थोड़ा सा ही मांगते फिर। तो यहां माधवेंद्र पुरी ये दिखा रहे हैं अपने उदाहरण से। और फिर माधवेंद्र पुरी अब तुरंत जान गए कि यहां पर और रुकना ठीक नहीं, क्योंकि यदि ये यहां पर मैं और रुकूंगा तो ये पुजारी जो है ये पूरे रेमुना में इस घटना के विषय में सबको बताने वाला है, तो होगा क्या, सभी आएंगे मेरा गुणगान करने के लिए। तो उस प्रशंसा से भागने के लिए माधवेंद्र पुरी उसी क्षण निकल पड़े रेमुना से बाहर। तो इस सारे संसार में लोग प्रशंसा के पीछे भागते हैं और यहां पर माधवेंद्र पुरी प्रशंसा से भाग रहे हैं और वो तुरंत जगन्नाथपुरी की तरफ चले गए और वहां पर जगन्नाथ जी का दर्शन किया, वहां पर कीर्तन नृत्य किया और अपने आप को सुरक्षित स्थान में उन्होंने माना कि अब यहां पर कोई मुझे जानता नहीं, किसी को पता नहीं कि स्वयं भगवान ने मेरे लिए खीर चुरा कर रखी, परंतु वो समाचार उनके आने से पहले ही वहां पहुंच चुका था। तो सभी माधवेंद्र पुरी के स्वागत के लिए वहां पर उपस्थित थे। कौन से माधवेंद्र पुरी, जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराई और उन्हें नाम मिला। फिर पहले केवल गोपीनाथ पुकारते थे, अब खीर चोर गोपीनाथ ये नाम उन्हें मिला। इसलिए एक नीति के श्लोक में बताया गया है कि ये जो लोग स्तुति के पीछे भागते हैं कि मेरी स्तुति होनी चाहिए, लोग मेरी प्रशंसा करना चाहिए, ये जो स्तुति एक कन्या है और हर समय ये स्तुति कन्या अविवाहित रहती है। ये स्तुति कन्या का कभी विवाह नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि जो इस स्तुति कन्या से विवाह करना चाहते हैं, स्तुति कन्या उसे नहीं चाहती विवाह करना, और स्तुति जिससे विवाह करना चाहती है वो उससे दूर भागते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए ये जो स्तुति कन्या है इसका कभी विवाह नहीं हो सकता। वैसे ही माधवेंद्रपुरी की प्रशंसा इनके पीछे पीछे भाग रही है, कहां से? रेमुना से जगन्नाथपुरी, अपना हाँ जगन्नाथपुरी। परंतु वहां पर भी पहुंचने के बाद फिर वहां से भी भागने का प्रयास किए, परंतु फिर माधवेंद्रपुरी सोचे कि मैं इस स्तुति को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता हूं। ये एक शुद्ध भक्त की चेतना होती है। तो उन्होंने फिर सबको बताया कि ठीक है, आप लोग यदि मेरी सेवा ही करना चाहते हो तो चंदन लेकर आओ। तो अब वो लोग सब पूरी तैयारी किए चंदन लाने की, और फिर चंदन को कैसे वृंदावन तक पहुंचाने की, क्योंकि बीच में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि बहुत से टोल नाका, और टोल नाका से कैसे वो क्या बोलते हैं उसे, चुंगी, ट्रांसपोर्ट क्लियरेंस, ऑक्ट्रॉय, हाँ, तो ऑक्ट्रॉय बीच में बहुत कुछ भरना पड़ेगा इसके लिए, उसके कागजात बनाकर वो सब कुछ तैयारी कर कर फिर उन्होंने वो चंदन को वृंदावन की तरफ ले जाने की योजना की। और फिर जाते समय रास्ते में फिर से माधवेंद्रपुरी रेमुना पहुंचे, और रेमुना में अब पूरा ऑफरिंग होने के बाद फिर खीर मांग के लिए, भगवान चुराने से पहले, देखिए ये उनका स्तर कि भगवान चुराएं उससे पहले मैं ले लेता हूं। और फिर उन्होंने उस खीर का आस्वादन किया, और फिर रेमुना में उस रात्रि को जब उन्होंने विश्राम किया तो फिर से भगवान सपने में आए तीसरी बार। अब गोपाल जी सपने में आए, जो गोवर्धन पर्वत पर गोपाल जी सपने में आए और माधवेंद्रपुरी से कहा कि इतना चंदन यहां लाने की जरूरत नहीं है, गोपीनाथ जी को चढ़ा दो, क्योंकि मुझमें और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं। अब देखिए, मानो कि कोई कहेगा इतना मुझे भेजा क्यों फिर, पहले ही बोल देता, मैं फोन करके बोल देता उनको वहां पर ही चंदन लगा दो तुम, अभी मुझे सपने में आकर आदेश दिया कि जाके मलय चंदन लेकर आओ, और फिर इतना सब कुछ दौड़ धूप कर कर मैं लाया, और अब बोल रहे हो उसको उनको चढ़ा दो गोपीनाथ जी को, नहीं। क्योंकि भगवान यहां पर क्या स्थापित कर रहे हैं कि उनमें गोपाल जी में और गोपीनाथ जी में कोई अंतर नहीं है। जैसे कई बार राधा गोपीनाथ मंदिर में कोई फेस्टिवल होता है तो कई भक्त अर्च विग्रह के लिए कुछ बनाते हैं, कुछ हार, विशेष हार या कोई लड़ी या इस प्रकार की चीजें बनाते हैं, तो वो कई बार विशेष केवल कोई राधा रानी के लिए बनाया है या कोई केवल गौर निताई के लिए बनाया है, तो बोल के भेजते हैं ये केवल गौर निताई को ही पहनाना और किसी को नहीं। ये नहीं समझते कि चाहे गौर निताई को पहनाया जाए, चाहे गोपीनाथ जी को या गोपाल जी को, इनमें उस प्रकार से कोई अंतर नहीं है। हालांकि है, कोई कहे कि अंतर नहीं तो फिर इतने सारे क्यों, एक ही होना चाहिए ना, अचिंत्य भेद अभेद तत्व इसमें समझ में आता है। तो एक भी है और अनेक भी हैं ये दोनों। तो फिर इतने प्रसन्न हुए अब माधवेंद्रपुरी की, ये गोपाल जी और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तो फिर वहां पर उनको कहा कि ये सारा चंदन आप लोग गोपीनाथ जी को लाओ, तो वो इतने प्रसन्न हो गए रेमुना के सारे भक्त और पुजारी, तो उन्होंने फिर अर्पित किया। और फिर माधवेंद्रपुरी वृंदावन की तरफ निकले, हालांकि भगवान ने बोल दिया था, परंतु फिर भी वो चंदन लेकर गए कुछ। ऐसा नहीं कि अब गोपाल जी ने बोल दिया तो फिर चंदन अब एक बिल्कुल भी नहीं लेके जाएं, वो लेकर गए चंदन फिर भी। अब यहां पर इस पूरे जो लीला के अंत में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से पूछते हैं, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी सम भाग्यवान जगते नहीं आर। नित्यानंद प्रभु से वो पूछते हैं कि नित्यानंद प्रभु विचार करो। चैतन्य महाप्रभु ये प्रश्न नित्यानंद प्रभु के सामने रख रहे हैं कि हे निताय विचार करो, इस पूरे जगत में माधवेंद्र पुरी जैसा भाग्यवान कोई भक्त हुआ है? विचार करो। अब सोचो कि जब गौर निताय विचार करें तो वो विचार कैसा विचार होगा। तो ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को विचारधारा में लगा रहे हैं कि इनसे बड़ा भाग्यवान कोई है, और फिर वो माधवेंद्र पुरी के विषय में सोचते हुए एक श्लोक याद कर रहे हैं जो कि माधवेंद्र पुरी अपने हर समय ये श्लोक गाया करते, और विशेष रूप से जब वो अंतर्धान हुए तो अपने तिरोभाव से पहले उन्होंने ये श्लोक का उच्चारण किया जो चैतन्य महाप्रभु किए। आई दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वद अलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम्। आई दीन दयाद्र नाथ, देखिए भगवान के अलग अलग नाम हैं, गोपीनाथ राधा नाथ, भगवान के अलग अलग नाम है, इसमें से ये कौन सा नाम पुकार रहे हैं? दयाद्रनाथ, कि मैं दीन हूं और आपका एक नाम है दयाद्रनाथ या दीनानाथ, और हे मथुरानाथ कब आपका दर्शन होगा? ये माधवेंद्र पुरी प्रार्थना कर रहे हैं कब आपका दर्शन मेरे आंखों से मैं करूंगा आपका, क्योंकि ये जो मेरा हृदय है ये कातर हुआ जा रहा है आपके दर्शन के बिना, और इसलिए आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूं आपके दर्शन के बिना। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब सोचे, माधवेंद्र पुरी इस श्लोक का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो अब चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का उच्चारण करने जा रहे थे परंतु केवल इतना ही कर पा रहे थे, आई दीन आई दीन आई दीन, इसके आगे वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे उच्चारण, क्यों? भाव विभोर अवस्था में, और इस भाव विभोर अवस्था में वो माधवेंद्र पुरी का गुणगान करते हुए कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, और अंत में उन्होंने कहा, महादयामय प्रभु भक्त वत्सल चंदन परिभक्त श्रम करिल सफल। और इस प्रकार से जो महादयामय महाप्रभु हैं, महाप्रभु क्या कह रहे हैं किसके विषय में? कृष्ण के विषय में, कि महादयामय महाप्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु वो उनका गुणगान किए और वो चंदन को कहे कि वहीं पर गोपीनाथ को अर्पित कर दो, ये देखते हुए कि बीच में इतने मुसलमान प्रांत आएंगे जिसमें वो चंदन को लाना मुश्किल होगा। तो भगवान देखिए उस समय भी सोच रहे थे कि बहुत तकलीफ होती है उनसे, तो इसलिए वहीं पर अर्पित कर दो गोपीनाथ जी को। तो वो भक्तवत्सल था, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने देखी, और फिर चैतन्य महाप्रभु वो गोपीनाथ जी का दर्शन करते हुए नृत्य करते हुए, फिर पुजारी ने चैतन्य महाप्रभु के लिए अब वो अमृत केली खीर लेकर आए, तो 12 मटके उसमें से चैतन्य महाप्रभु ने जो पंच तत्व पांच तत्व उनके लिए एक एक मटका 5 मटके निकाले और बाकी 7 मटके फिर से भिजवा दिए, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसका आस्वादन किया अमृत केली का। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यहां पर चैतन्य महाप्रभु वो ढोंग कर रहे थे खाने का, कैसे? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अभी ऑल्टर पर खाए, कौन है चैतन्य महाप्रभु? वही गोपीनाथ हैं। तो अभी अभी तो गोल्टर पे खाए, अब फिर से खा रहे, तो वो ढोंग कर रहे खाने का। तो मानो चैतन्य महाप्रभु क्या ढोंगी है? इस दृष्टिकोण से उनको ढोंगी कहते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि है वही गोपीनाथ, परंतु अब खाने का सबके सामने ढोंग कर रहे हैं कि मैं प्रसाद खा रहा हूं। अरे वो अंदर जो भोग खाए वो कौन थे? तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, पंचतत्व और उनके जो इतने सारे पार्षद हुए उनकी अचिंत्य लीला। श्रीमान गौरांग महाप्रभु की, शिल प्रभुपाद की जय। एक बहुत ही शुभ समाचार है कि आज हम हिज होलीनेस महाविष्णु महाराज से मिलकर आए और वो राजी हुए हैं गौर पूर्णिमा की सुबह की क्लास देने के लिए। तो हम प्रार्थना करते रहे कि वो सुबह की क्लास गौर पूर्णिमा के लिए, वो गौर पूर्णिमा के दिन भी राजी हो जाए। अभी तो आज राजी हो गए, उस दिन भी वो राजी हो जाए और उस दिन के सुबह की क्लास के लिए वो आएंगे और उनके मुखारविंद से हमें सुनने मिलेगी भगवान की गाथा। हरे कृष्णा।